सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वर्चायाणं नमो लोये सवसाहूणं तिहुवनशिरसे हरहे भवभयगभ्रादुणिगदेपणं सिद्धे जीवठाणस् अमलिनगुणचूलियं वोच्छं। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। छठी पुस्तक जो चूलिका है, उसमें अभी हम छठी चूलिका में आ गए। पहले प्रकृति समुत्कीर्तन देखा था, फिर स्थान समुत्कीर्तन, और तीन महादंडक देखे हमने तीन चूलिका रूप से। तो अभी छठवा भाग, ये छठी चूलिका चल रही है। अब यहाँ स्थिति की बात उठाने वाले हैं, कर्मों की जो स्थिति है उसके संबंध में यहाँ प्ररूपण चलेगा। विषय तो शुरू किया था प्रथम उपशम सम्यक, तो जिसे होता है तो उसे कर्मों की कितनी स्थिति होने पर उसको प्रथम उपशम सम्यक हो सकता है, वो समझाने के पहले ये स्थिति क्या होती है, कितनी होती है, उत्कृष्ट क्या होती है, जघन्य क्या होती है, उसकी बात अब कहेंगे। तो हम यहाँ पृष्ठ संख्या 146 पर आए हुए हैं। यहाँ शुरू से करते हैं कि स्थिति किसे कहते हैं, स्थिति कहना किसे है। तो हमें मालूम है कि जब कर्म का बंध होता है तो उसमें चार प्रकार से उसको समझाया जाता है। एक तो है प्रकृति बंध, कौन सी प्रकृति बनती है उसको कहेंगे प्रकृति बंध। प्रदेश बंध में कितने नंबर ऑफ परमाणु बनते हैं उसको कहते हैं प्रदेश बंध। प्रदेश यानी परमाणु, यहाँ पर एक परमाणु को एक प्रदेश कहा तो वो प्रदेश बंध कहलाता है। स्थिति बंध यानी उन परमाणुओं में कितने काल तक जीव के साथ रहकर उदय होगा बाद में, उसको स्थिति कहते हैं। और अनुभाग यानी वो कितना और कैसा फल देगा उसको अनुभाग कहते हैं। जब कर्म बनता है तभी ये सारा निश्चित हो जाता है। तो हमने ये भी देखा था कि प्रदेश बंध और प्रकृति बंध योग के अनुसार होता है, और जो स्थिति बंध और अनुभाग बंध है वो कषाय के अनुसार होता है, उसकी बात अब यहाँ चलेगी। तो शंकाकार का कहना है कि स्थिति किसे कहते हैं, उसका समाधान करते हैं, योग के वश से कर्म स्वरूप से परिणत पुद्गल स्कंधों का, क्या कहते हैं, कारमाण वर्गणा है। पुद्गल स्कंध है ना कारमाण वर्गणा, ये कारमाण वर्गणा है, कर्म रूप परिणत होती है, और उसमें निमित्त कौन है, योग। योग के वश से लिखा है, योग यानी क्या, जीव में जो योग होता है। योग किसे कहते हैं मालूम है, आत्म प्रदेशों का जो कंपन है, परिस्पंदन है, उसको योग कहते हैं। तो योग क्यों होता है मालूम है आपको, सिद्धों में नहीं होता और हमारे में क्यों होता है, कषाय से अनुरंजित वो लेशा हो जाए, योग का परिणाम उसको लेशा कहते हैं। योग किसके कहना और क्यों होता है योग, हाँ मन वचन का है तो पुद्गल है, उससे कैसी हमारी प्रवृत्ति होगी, हाँ वही जीव का भाव। जैसे सयोगी तक योग है, 13वें तक, अयोगी को योग नहीं है, उनके क्यों नहीं है, हाँ वो उसमें निमित्त भी देखेंगे कि नहीं देखेंगे हम, या तो कर्णानियोग में तो निमित्त की भाषा में, वो तो अभी जीव की योग्यता है उसके कारण वो वहाँ प्रदेशों का कंपन होता है, वो बात सही है, फिर भी वहाँ हम निमित्त को ढूंढेंगे, क्योंकि कर्णानियोग में तो निमित्त की भाषा में। तो योग होता ही क्यों है, जैसे क्रोध का निमित्त कौन कहेंगे हम, चारित्र मोहिनी का जो क्रोध कर्म है उसके उदय में यहाँ क्रोध भी होता है। कर्ता तो जीव स्वयं है, परंतु सामने वो क्रोध कर्म का उदय है। कर्म कुछ नहीं कराता है, वैसे यहाँ योग होता है जीव में, तो वहां निमित्त कोई है। हाँ हाँ, कौन सा कर्म? हाँ, कौन से कर्म के उदय? आप कहते हैं पुराने कर्म के उदय में होता है योग। मोहनी के में तो कषाय हो गए, मोहनी के उदय में क्रोध मान माया लोभ हास्यरति वगैरह सब हो जाएंगे। हाँ, कौन सा नाम कर्म? इतना याद नहीं, थोड़ा सा याद है। हाँ, तो देखिए जो शरीर नाम कर्म है, शरीर नाम कर्म के उदय में योग होता है। जैसे औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय में औदारिक का योग होता है वगैरह वगैरह। परंतु यहाँ जिस योग की, कर्म बंधने में जिस योग की बात है, वहाँ कारमान शरीर नाम कर्म के उदय में योग होता है, यानी भाव योग होता है। ऐसी शक्ति जीव में उत्पन्न होती है, वो तो भाव योग हुआ। और उस भाव योग यानी ऐसे होने पर जीव मनोवचन काय का अवलंबन लेता है, वो पुद्गल स्कंधों का अवलंबन लेता है और परिस्पंदन होता है, तो उसको हम मनोयोग वचन योग का योग कहते हैं। ख्याल है? परंतु यहाँ कारमान शरीर नाम कर्म के उदय में क्या होता है? योग होता है ना, क्या कर्मों को आकर्षित करने की, कर्माकर्षण शक्ति कही जाती है, कर्म को आकर्षित करने की शक्ति। यानी कारमान वर्गणा कर्म रूप परिणमित हो जावे, किस कारण? यहाँ निमित्त लेना, जीव का योग यानी परिस्पंदन, उसका कंपन। अब तेजस शरीर नाम कर्म के उदय में तेजस वर्गणा के परमाणु तेजस शरीर रूप परिणमित हो जाते हैं। औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय में औदारिक जाति के परमाणुओं का ग्रहण होता है और उस शरीर रूप परिणमित होते हैं। क्योंकि अभी हम मनुष्य है और कोई तिर्यंच है, उनके कौन से शरीर नाम कर्म का उदय चल रहा है? औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है, तो वे औदारिक जाति के परमाणु को ही ग्रहण करेंगे। वैकिरेक जाति के परमाणु तो यहाँ भी पड़े हैं, ऐसा नहीं कि वे वैकिरेक परमाणु स्वर्ग में है और नरक में है। वो वर्गणाएं तो सर्वत्र है, पूरे लोकाकाश में। फिर हम ही औदारिक जाति के क्यों ग्रहण करते हैं? और नारकी और अभी देव यहाँ पर आ जाएंगे, समो शरण में आएंगे, तो वो तो वैकिरेक जाति के परमाणु हर समय ग्रहण करेंगे। यानी यहाँ वैकिरेक परमाणु नहीं है, वो बात नहीं है। परंतु जिस नाम कर्म का उदय है, शरीर नाम कर्म की बात है, वैसे जाति के परमाणु का ग्रहण होता है, यानी वहां वैसा योग होता है। अब सयोगी के होता है और अयोगी के क्यों नहीं होता? हाँ, अभी आसान है ना, उनके तेजस कारमान सभी शरीर नाम कर्म औदारिक नाम कर्म का उदय मिट जाता है, उदय की विच्छित्ति होती है, तो उनके कोई शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है। कारमान शरीर नाम कर्म का भी उदय नहीं है, तो कर्म का ग्रहण भी वहां नहीं है, तो उसको हम अयोग केवली कहते हैं। ये योग की बात 85 इकाई के ऊपर के प्रवचन है स्वामी जी के, उसमें ये बात आई है प्रवचन प्रसाद में। ये लोग कहते हैं ना, वो स्वामी जी कुछ करना नियोग का नहीं कहते थे, ये बहुत गहरा अभ्यास था। ये बात करना नियोग पढ़ने वालों को भी मालूम नहीं है, ये योग क्यों होता है, ये शरीर नाम कर्म के उदय में होता है ऐसा। तो वो होता है वो भाव योग। देखो, जब जब हम आश्रव है, बंध है, मोक्ष है, जो कुछ है उसमें द्रव्य और भाव ऐसा डिवाइड करते हैं, तब द्रव्य हम पुद्गल के खाते में डालते हैं और भाव वो जीव के खाते में रखते हैं। योग के बारे में, भाव योग भी जीव में है और द्रव्य योग में भी, वो भी जीव में है। भाव योग यानी शक्ति और द्रव्य योग यानी एक्चुअल कंपन। भाव योग यानी कर्मों को ग्रहण करने की, या शरीर परमाणु को शरीर के परमाणु को नो कर्म वर्गणा कहते हैं। आपका ऐसा प्रश्न है, नाम कर्म की निर्जरा ज्यादा होती है तो योग ज्यादा होता है क्या? ऐसी बात नहीं है, उसका अलग, सारा योग का जो प्रकरण है वो अलग है। ख्याल है ना? तो देखिए, हाँ, द्रव्य योग यानी कंपन, एक्चुअल कंपन, यानी प्रदेशों का हलन चलन, प्रदेशों का कंपन, परिस्पंदन, उसको द्रव्य योग कहते हैं। और भाव योग यानी वो करने की शक्ति है होती है, तभी तो कंपन होगा ना, तो वो भाव योग है। नाम, पुराने नाम कर्म के कौन सा नाम कर्म? शरीर नाम कर्म। पांचों ही शरीर नाम कर्म ले सकते हैं, पांच शरीर नाम कर्म है ना, तो उसमें कारमान नाम, शरीर नाम कर्म के उदय में वो कर्म को ग्रहण करने की शक्ति होती है। और अन्य जो चार है उस सबको मिलकर नौ कर्म कहते हैं, नौ कर्म वर्गणा। उन शरीर नाम कर्म के उदय में नौ कर्म वर्गणा का ग्रहण होता है। नौ कर्म शरीर कहो या नौ कर्म वर्गणा कहो, उसमें तेजस शरीर, औदारिक वैक्रेक और औदारिक वैक्रेक आहारक और तेजस, चारों को मिलकर वहां नौ कर्म कह देते हैं। इन शॉर्ट योग क्या है, तो कर्म और नौ कर्म को ग्रहण करने की शक्ति है। यह आत्मा का ऐसा परिस्पंदन है जिसके कारण कर्म का और नौ कर्म का ग्रहण होता है। ग्रहण होता है ना, आत्मा के अंदर घुस नहीं जाते हैं, परंतु वे वर्गणाएं उस शरीर रूप से परिणमित होती है। कारमान वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती है, और नौ कर्म वर्गणा नौ कर्म शरीर रूप से परिणमित होती है। कर्म शरीर को छोड़कर अन्य जो चार शरीर है उस सबको मिलकर नौ कर्म शरीर कहते हैं। ये नौ कर्म ने शरीर मन वाणी तो हम कहते ही है, परंतु यहां पर जो उसका अर्थ है, ये सारे पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण है। जीव वह नहीं है, ये तो उपाधि है वहां। तो अब क्या कहते हैं, स्थिति किसे कहते हैं? अब यहां हम आए कि ये कर्म का ग्रहण होता है, योग के कारण वो डिसाइड होता है कि नंबर ऑफ परमाणु कितने हैं। आपका जो प्रश्न था ना कि अधिक निर्जरा होगी, निर्जरा में आप परमाणु की संख्या देख रहे हैं, बराबर। हमेशा जो निमित्तपना बनता है वो अनुभाग का बनता है। अभी 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 मैं आपको पूछूंगी या मैं आपको कहूंगी, जब कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करने जा रहा है, अब वो करण लब्धि में आया है, अपूर्व करण, अनिवृत्तिकरण वगैरह वो सभी, उसमें क्या शुरू हो जाता है? मिथ्यात्व की भी गुण श्रेणी शुरू हो जाती है, मिथ्यात्व कर्म की। असंख्यात गुणित प्रमाण में उसकी निर्जरा शुरू हो जाती है मिथ्यात्व की। तो मिथ्यात्व बढ़ेगा कि घटेगा? क्यों? हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ परमाणु कितने उदय में आते हैं उस पर उसका फल निर्भर नहीं है। उसका अनुभाग तो अनंत गुणा हीन 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 होकर उदय में आ रहा है, परमाणु तो निकल जा रहे हैं, परंतु उसका फल अत्यंत हीन 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 रूप से चल रहा है। यानी जीव में भी मिथ्यात्व अत्यंत मंदता की ओर बढ़ रहा है। निमित्तपना तो जीव के भावों को बताता है, वहां गढ़ गए इसलिए जीव ने मिथ्यात्व कम किया, ऐसा नहीं है। परंतु ये कर्णानुयोग में कर्म की भाषा में ही कथन किया जाता है, निमित्त की ओर से कथन किया जाता है, कथन करने में कोई दोष नहीं है। परंतु यदि हम मानते क्या करें, हमारा तो मिथ्यात्व का तीव्र उदय चल रहा है, नहीं तो हम भी सम्यक तो प्राप्त करते, तो ऐसा है ही नहीं है। जीव पूर्ण स्वतंत्र है अपने भाव करने में, वो कर्म तो उसके भाव कौन से चल रहे इसको दिखाने वाला है। जैसे बैरोमीटर लगा है, वो मर्क्यूरी ऊपर नीचे होते हैं उसमें, तो वो होने से टेम्परेचर बदलता है कि वो टेम्परेचर को बताने वाला है खाली? एटमोस्फेरिक टेम्परेचर कितना है, हवामान क्या चल रहा है, तापमान, उसको बताने वाला है। वैसे कर्म की ओर, कर्म की जो अवस्थाएं है उसको देखकर हम जीवों के भावों को हम जान सकते हैं, तो उसी की भाषा में कथन किया जाता है। तो अब यहां स्थिति की बात चल रही है, तो स्थिति कहते किसे है? योग के वश से, वश से यानी उसके निमित्त से, कर्म स्वरूप से परिणत, क्योंकि ये जो पुद्गल स्कंद है वो कर्म रूप परिणत होते हैं, तो पुद्गल में परिणमन करने का गुण है कि नहीं है? वो अपना परिणमन कर सकते हैं क्या? जीव आएगा तब उनका परिणमन होगा, वो भी स्वतंत्रता से अपने स्वयं की उपादान योग्यता से परिणत हो रहे हैं पुद्गल रूप से, कर्म रूप से, परंतु वहाँ योग का निमित्त है। तो योग के वश से कर्म स्वरूप से परिणत पुद्गल स्कंधों का, अब ये तो कर्मरूप परिणत हुए, तो उसमें जो स्थिति अनुभाग पड़ता है ना, तो कषाय के वश से अब ये कषाय का निमित्त लिया। एट अ टाइम योग भी है और कषाय भी है। कषाय के वश से जीव में एक स्वरूप रहने के काल को, एक स्वरूप रहने के ने कर्म रूप अवस्था में ही रहने का जो काल है, यानी कितने काल तक वो जीव के साथ रहेगा, उसको कहते स्थिति। उस काल को स्थिति कहते हैं। शंका, उस कर्म की उत्कृष्ट स्थिति ही पहले किस लिए कहते हैं? अब यहाँ उत्कृष्ट स्थितियों का वर्णन चलेगा। कल हमने सूत्र पढ़ा था ना, आगे उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन करेंगे ऐसा कहा था आचार्य ने। तो उसके लिए शिष्य पूछता है कि उत्कृष्ट स्थिति का ही वर्णन क्यों करने जा रहे हो आप? तो उसका समाधान करते हैं, क्योंकि समस्त स्थिति विशेषों की, स्थिति विशेष यानी अलग अलग स्थिति, स्थिति के अलग अलग स्थान, जैसे ज्ञानावरण की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर है जो कोई बांधता है अधिक से अधिक, और जघन्य में जघन्य कितनी है भाई? देवेंद्र भाई आप मदद करना जरा, एक अंतर्मूर्त कौन बांधेगा? दसवें गुणस्थान के अंत समय में। तो ये जो सारे जो भेद है वो स्थिति के भेद कहेंगे। 33 कोड़ा कोड़ी सागर माइनस एक समय, माइनस दो समय, माइनस तीन समय, ऐसे सभी वेरिएशंस देख लो, तो ये सारे स्थिति के भेद कहलाएंगे। उसको कहते हैं स्थिति विशेष, स्थिति के स्थान भी कह सकते हैं उसको। तो समस्त स्थिति विशेषों की संग्रह करने वाली, यानी जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक सभी स्थितियां जिसमें अंतर्भूत है, जब हम उत्कृष्ट स्थिति कहेंगे तो उससे एक समय कम, दो समय कम, 1000 साल कम, वो सब स्थितियों के जो भेद है वो उसके अंदर गर्भित है, इसलिए कहा उसमें संग्रहित हो जाती है। उत्कृष्ट स्थिति के प्ररूपण किए जाने पर, यानी जब हमें उत्कृष्ट स्थिति का पता है तो उसके अंदर वाले सभी स्थितियों उसमें समाहित है ऐसा जान सकते हैं। सर्व स्थितियों के निरूपण की सिद्धि होती है, फिर दोबारा नहीं बताना पड़ता कि 30 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर 30 कोड़ा कोड़ी सागर माइनस एक समय, 30 कोड़ा कोड़ी सागर माइनस दो समय, ये सब बताना ही नहीं पड़ता। ज्ञानावरण की 30 बता दी, अगर कोई पूछेगा दर्शनावरण की कितनी होती है, हमें सबको मालूम है कितनी है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर है ना, मिथ्यात्व की। मैंने दर्शनावरण कहा क्या? दर्शन मोहनी कहना था मुझे, हाँ मैंने गलती की। हाँ, दर्शनावरण की भी 30 कोड़ा कोड़ी है, दर्शन मोहनी है मिथ्यात्व, उसकी 70 कोड़ा कोड़ी है, और चारित्र मोहनी की पूछेगा तो 40 कोड़ा कोड़ी सागर। इस तरह से ये उत्कृष्ट स्थिति बताएंगे अभी हमको। तम जहां, वह उत्कृष्ट स्थिति किस प्रकार है वो अभी आगे बताएंगे, अलग अलग प्रकृतियों के नाम लेकर उनकी कितनी स्थिति है वो बताएंगे। पंचन्नम नानावर्णीयाणम नवन्नम दंसनावर्णीयाणम असादा वेदनीयम पंचन्नम अंतरायणम उक्कसवोठिदिबंधो तीसम सागरोवम कोड़ा कोड़ियो। इन सबकी 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। किस किस के देखो, पांचों ज्ञानावर्णीय, पांचों एक साथ बनती है ना, और पांचों के भी कहेंगे 30 कोड़ा कोड़ी सागर। नवो दर्शनावर्णीय असाता वेदनीय, वेदनीय में से असाता को अलग निकाला, और पांचों अंतराय, इन कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति बंध 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। सागरोपम का हमें माप मालूम है, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है, वो भी अद्धा पल्ले अद्धा सागर, उसकी बात हमने पहले की थी। तो इनको तिसीय कर्म भी कहते हैं, तिसीय, जिसके 20 कोड़ा कोड़ी सागर है उसको बीसीय कहेंगे। ऐसे कोई कर्म मालूम है आपको कौन है? नाम और गोत्र। हाँ, और चारित्र मोहिनी की वो 40 है तो उसको 40 ही कहेंगे। इन सूत्रोक्त कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण होती है। अब शंका, इस स्थिति बंध में एक समय में बंधे हुए क्या सभी पुद्गल परमाणुओं की स्थिति 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम होती है अथवा सबकी नहीं होती है? एक समय में कितने परमाणु बनते हैं पता है आपको? डेढ़ गुणहानि समय प्रबद्ध, वो तो सत्ता में पड़े हुए कर्म है। एक समय में बंधने वाले का नाम ही समय प्रबद्ध है, तो एक समय प्रबद्ध में कितने परमाणु होते हैं? तो अनंत होते हैं। वो कौन सा वाला अनंत, वो आगे बताएंगे, वो अभव्यों से अनंत गुणा सिद्धों से अनंत भाग वगैरह वगैरह ख्याल है ना। तो ये एक समय में अनंत कर्म परमाणु बनते हैं, तो एक समय में बंधे है तो मान लेते हैं किसी ने उत्कृष्ट ज्ञानावरण का बंध किया, तो वे अनंत के अनंतों की स्थिति 30 कोड़ाकोड़ी सागर होगी क्या नहीं होगी? एक समय में अनंत परमाणु बंधे तो अनंत के अनंत परमाणुओं की स्थिति 30 कोड़ाकोड़ी सागर है कि नहीं है? दूसरे की तरफ मत देखो, अपना विचार करो। हाँ, अनंत के अनंत की हो सकती ना, होती है कि नहीं होती? ये प्रश्न पूछा ना शंकाकार ने, उसको उत्तर जवाब देना पड़ेगा और जवाब हमें पहले सोचना पड़ेगा। आप कहते हैं आबादा काल जो होता है, आपने सुना है आबादा काल क्या है? वो अभी बताएंगे थोड़ी देर में। आबादा काल ने जो 70 कोड़ाकोड़ी वाला मिथ्यात्व का कर्म है उसकी आबादा 7000 साल होती है। तो 7000 साल और एक समय में कुछ परमाणु खिरेंगे तो उतने परमाणुओं की स्थिति कितनी हुई? 7000 और एक समय, फिर 7000 दो समय, 7000 तीन समय, ऐसे 7000 वर्ष और एक समय से लेकर 30 कोड़ाकोड़ी सागर तक प्रत्येक समय में उस 70 कोड़ाकोड़ी उस समय में बंधे हुए जो है वो परमाणु में से कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ परमाणु खिरते रहेंगे। यानी स्थिति प्रत्येक एक एक लॉट जिसको हम निषेक कहते हैं, एक निषेक यानी नंबर ऑफ परमाणु एक साथ खिरने वाले, तो उसका एक निषेक की उतनी स्थिति, दूसरे निषेक की एक समय ज्यादा स्थिति, तीसरे निषेक की एक समय ज्यादा स्थिति, वो तो अलग अलग समयों में बंधे हुए की बात कर रहे हैं आप। एक समय में अनंत परमाणु खिरते हैं, देखिए वो एक साथ। हाँ देखो देखो, रूल ऐसा है, हम हर समय कर्म बांधते हैं है ना, तो हर समय कर्म बांधते हैं तो आबादा में तो कोई कर्म खिरता नहीं है, ये आबादा काल है, उसमें कोई निषेक रचना नहीं है, ऐसा हम कहेंगे। आबादा काल के बाद पहले समय में कुछ परमाणु खिरेंगे, अभी अनंत बांधे हैं, यहाँ आगे उदाहरण लेकर समझाएंगे, 6300 का उदाहरण लेकर समझाने वाले, तो पहले समय में कुछ खिरे, दूसरे समय में और एक लौट गया, एक कम कम होते होते चले जाते हैं, इस तरह से इसको निषेक रचना कहेंगे हम। पहले समय ये सब एक साथ बांधे थे एक समय में, एक समय प्रबद्ध की ऐसी रचना होती है, हर समय बांधते हैं ना हमेशा, तो हर समय की ऐसी रचना अलग अलग है। कोई अन्य समय में बांधा हुआ, अभी जिसका आबादा काल यहाँ तक ही पूरा हुआ था उसके पहले बांधे हुए, उसकी भी रचना ऐसी है यहाँ पर, तभी इसका जब ये निषेक खिरने वाला है तो उसका ये निषेक खिरने वाला है, और कहीं दूसरे किसी समय का और कोई निषेक खिरने वाला है, सबकी एक साथ उसका फल मिलता है, ये सभी एक साथ खिर रहे हैं। यानी एक समय में बंधे हुए लंबे काल तक खिरते रहेंगे और अलग अलग समयों में बंधे हुए एक साथ खिरेंगे। यानी एक समय में जितने अनंत परमाणु बांधे हैं उतने ही अनंत परमाणु अलग अलग समयों में बंधे हुए एक साथ खिरेंगे।
हाँ
हाँ, प्रत्येक समय में आठों ही कर्मों का उदय चलता है, यानी सभी कर्म परमाणु फिर रहे हैं। वो तो जाता ही है, परंतु अभी हम खाली ज्ञानावरण की बात करेंगे, ये अकेले ज्ञानावरण की है। आठों कर्म खिरेंगे तो खिरेंगे, परंतु आठों का फल अलग अलग है ना। हमें ज्ञानावरण का कितना फल मिलता है या मिथ्यात्व का कितना फल मिलता है, तो ये जो एक साथ जो अलग अलग निषेक अलग अलग समयों में बंधे हुए, अब हम बैंक में कोई डिपॉजिट करते हैं, हाँ, तो आज जिसकी जिसकी मैच्योरिटी है वो सबका फल अपने को एक साथ मिलेगा ना, सबकी ग्रैंड टोटल मिल जाएगी आज आपको। वैसे ही अलग अलग समयों में बंधे हुए जिसकी स्थिति अभी इसी समय में पूरी होगी, वो सबका टुगेदर एग्रीगेट फल अपने को मिलेगा। और अभी इस एक समय में बंधे हुए उसका तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कहाँ तक, आबाधा से लेकर उत्कृष्ट स्थिति तक, हर समय उसमें से कुछ न कुछ परमाणु फिरते रहेंगे। ये कर्म की खास स्पेशलिटी है। सभी बंधे, हाँ, हर समय तक उत्कृष्ट स्थिति, यानी हर समय वो उत्कृष्ट स्थिति बांधेगा ऐसा नहीं है अभी। हाँ
हाँ,
उस ऐसा ही होता है। और कितने बनते हैं तो पहले समय में कितने खिरेगा उसका भी गणित है, हाँ, फिर दूसरे समय में कितने कम खिरेंगे, तीसरे समय में कितने कम खिरेंगे, हाँ, कम नंबर ऑफ परमाणु कम होते जाते हैं। पहले समय में मैक्सिमम खिरेंगे, दूसरे समय में कुछ कम कुछ कम कुछ कम ऐसा। अभी ये सारे उसमें क्या क्या शब्द आते हैं वो सब आने वाला है यहाँ, हाँ, ये पहले हुआ है अपना, ये तो जीव कांड कर्म कांड में भी हुआ है और संदृष्ट अधिकार में भी हुआ है, अभी अभी भी होगा। कोई ऐसा नहीं कि दूसरों ने सुना है इसलिए हमको कोई डिफिकल्ट होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम सारे भूल चुके हैं विस्मरणशील शिष्य है ना हम तो आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम कुछ पीछे हैं, सब एक साथ है। देखो ये चौथे सूत्र के नीचे लिखा ना, अभी इन सूत्रोक्त कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण होती है। अब इस पर शंका पूछते हैं, हमने शंका पढ़ी थी दो लाइन है ना, इस स्थिति बंध में एक समय में बंधे हुए क्या सभी पुद्गल परमाणुओं की स्थिति 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम होती है अथवा सबकी नहीं होती है, प्रश्न पूछा ना। प्रथम पक्ष के मानने पर, यानी यदि ऐसा मानेंगे कि सबकी 30 कोड़ाकोड़ी है, ऐसा यदि मानते हैं, आगे कहे जाने वाले आबाधा और निषेक संबंधी सूत्रों के अभाव का प्रसंग आता है। यदि सबकी सब स्थिति 30 कोड़ाकोड़ी होती तो एकदम यहाँ बांधे हैं और 30 कोड़ाकोड़ी सागर के बाद उसका उदय हो जाएगा, तो उसमें आबादा काल निषेक रचना ये जो हमने बताया, ये जो आगे वो बताने वाले आचार्य, ये सबका अभाव मानना पड़ेगा, बस बंधे और उतने काल के पीछे उदय में आवे वो पूरा का पूरा लौट, परंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि समान स्थिति वाले कर्म स्कंदों में, यानी यदि अनंतों का जो बंध हुआ था एक साथ उनमें समान स्थिति होगी, सबकी सब 30 सागर वाली 30 कोड़ाकोड़ी सागर वाली हम मानते हैं, तो उसमें आबाधा निषेक और विशेष, ये विशेष किसको कहना, हाँ, चय किसको कहना, हाँ, देखिए अभी पर निषेक यानी प्रति निषेक इक्वल संख्या में परमाणु घटेंगे तो उसको कहते हैं उसका विशेष यानी डिफरेंस, उसी का दूसरा नाम है चय और एक नाम है प्रचय और चौथा नाम क्या है, उत्तर, उत्तर, अरे वाह अच्छा उत्तर दिया, हाँ उत्तर, हाँ, तो ये प्रति निषेक उतना उतना कम हो जाता है, तो उसको चय कहेंगे, यहाँ विशेष लिखा है। तो यदि सबके सब हम 30 कोड़ाकोड़ी सागर की अगर मान लेते हैं, तो ना वहाँ आबादा होगा, ना कोई निषेक रचना होगी, और ना ही ये चय यानी विशेष वहाँ बताया जाएगा। और विशेष अर्थात हानि वृद्धि को सूचित करने वाले चय के अस्तित्व मानने में विरोध आता है, उसी को चय कहते हैं। चय यानी विशेष कहो या डिफरेंस कहो, अपनी भाषा में डिफरेंस। द्वितीय पक्ष के मानने पर, द्वितीय पक्ष के कौन सा है, सब कर्मों की स्थिति समान नहीं है, ऐसा अगर मानेंगे तो ज्ञानावरणादि कर्मों की सूत्रोक्त यानी सूत्र में बताई हुई 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण स्थिति घटित नहीं होती। आपने तो बताया उत्कृष्ट स्थिति इतनी होती है, और यदि सभी कर्मों की इतनी नहीं होती तो आप कैसे कह सकते हैं कि 30 कोड़ाकोड़ी, क्योंकि उस उत्कृष्ट स्थिति से एक समय कम आदि स्थितियां भी उन कर्मों में पाई जाती है। हमने देखा ना 30 कोड़ाकोड़ी सागर से एक समय कम, दो समय कम, तीन समय कम, ऐसे सभी स्थितियां पाई जाती है, तो आप 30 कोड़ाकोड़ी सागर ही क्यों कहते हो, ऐसी शंकाकार की शंका है। वो पकड़ना चाहते हैं ना, यदि ऐसा माने तो ऐसा होगा, ऐसा माने तो ऐसा होगा, उसका भी समाधान करेंगे। यहाँ पर उक्त आशंका का परिहार करते हैं, यानी उसकी जो शीर्षक में जो शंका है, प्रश्न है, उसका समाधान करते हैं, वह इस प्रकार है। यहाँ पर न तो एक समय में बंधे हुए पुद्गल परमाणुओं के पृथक पृथक ज्ञानावरण कर्म की विवक्षा है, क्योंकि वैसा मानने पर ज्ञानावरण कर्म के अनंतता का प्रसंग आता है। अनंत परमाणु है तो अनंत परमाणुओं की अलग अलग स्थिति तो नहीं कहेंगे, सबके उत्कृष्ट स्थिति कहेंगे, उसमें बाकी सब अंतर्निहित है। और न यहाँ पर एक एक निषेक के प्रति ज्ञानावरण ऐसा व्यपदेश दिया गया है, एक एक निषेक को ज्ञानावरण नहीं कहा, सब मिलकर जो एक समय प्रबद्ध है तो उसमें ज्ञानावरण है बंधा, ऐसा हम कहेंगे। उसमें ये मति ज्ञानावरण का श्रुत ज्ञानावरण ऐसी भी विवक्षा नहीं की है, और ना ही एक एक स्थिति वाला अलग अलग बंध बताया है। एक एक निषेक का अलग अलग बंध तो कथन करना संभव भी नहीं है, क्योंकि वैसा मानने पर ज्ञानावरण कर्म के असंख्ययता का प्रसंग आता है। क्या कहते हैं फिर से? हाँ, वो नहीं समझा ना? देखो, एक समय में कितने पुद्गल परमाणु बनते हैं, उसमें संख्या कितनी है? अनंत है। यदि एक एक पुद्गल परमाणुओं की अगर हम स्थिति बताएंगे तो अनंतता का प्रसंग आएगा। स्थिति की बात छोड़ो, एक समय में अनंत पुद्गल परमाणु यानी ज्ञानावरण के अनंत परमाणु बनते हैं। एक एक परमाणु को ज्ञानावरण कहेंगे और उसकी स्थिति अगर बताने जाएंगे तो ज्ञानावरण को अनंतता का प्रसंग आएगा। अनंत प्रकार हो गए ना, क्योंकि अनंत परमाणु है। और यदि एक एक निषेक को हम ज्ञानावरण कहेंगे तो निषेक कितने हैं? असंख्यात है। कैसे असंख्यात है? 30 कोड़ाकोड़ी सागर में कितने समय होते हैं? नहीं, असंख्यात पल्ल या असंख्यात का आवली में भी जघन्य युक्ता संख्यात समय है, तो पल्ल में भी असंख्यात है, सागर में भी असंख्यात है। यानी एक एक समय में एक एक निषेक, ऐसे कितने निषेक है? असंख्यात निषेक है। एक निषेक को हम ज्ञानावरण कहेंगे तो असंख्यात का प्रसंग आएगा, और एक एक परमाणु को हम ज्ञानावरण करके कहेंगे तो अनंतता का प्रसंग आएगा। ये वाक्य फिर पढ़ना, देखो यहाँ पर सेकंड लाइन से, न तो एक समय में बंधे हुए पुद्गल परमाणुओं के पृथक पृथक ज्ञानावरण कर्म की विवक्षा है। एक एक परमाणुओं को हम पृथक पृथक ज्ञानावरण नहीं कहा है, सबको मिलकर ज्ञानावरण बंधा है, ऐसा कहा ना, एक नाम दिया उसको। क्योंकि वैसा मानने पर ज्ञानावरण कर्म के अनंतता का प्रसंग आता है। एक एक परमाणुओं को हम ज्ञानावरण कहेंगे तो अनंत कहना पड़ेगा। और दूसरी बात, न यहाँ पर एक एक निषेक के प्रति ज्ञानावरण ऐसा व्यपदेश दिया गया, व्यपदेश ने उसको व्यपदेश यानी उसको ज्ञानावरण नहीं कहा है। एक निषेक जैसे पहले समय में किरने वाला, दूसरे समय में किरने वाला, निषेक किसे कहना? पुद्गल के परमाणुओं का समूह जो एक साथ खिरता है उसको निषेक कहा। एक निषेक को भी एक ज्ञानावरण नहीं कहते हैं क्योंकि निषेक असंख्यात होते हैं, परमाणु अनंत है और उसी के निषेक बने वो तो असंख्यात बने क्योंकि अनेक कोड़ाकोड़ी सागरों के हैं ना, वह उसमें असंख्यात आते हैं। तो एक निषेक को ज्ञानावरण, एक ज्ञानावरण कहेंगे तो असंख्यात का प्रसंग आएगा। हाँ, स्थिति वाला, सेम अनुभाग वालों को वो वर्ग वर्गणा, वो स्पर्धक वगैरह कहेंगे, उसकी बात अलग है, उसको वर्गणा। हाँ, सेम स्थिति वाले और उसमें वर्गणाएं कहते हैं उसको, सेम अनुभाग वालों को वर्गणा कहते हैं। देखो ये अभी हमने यहाँ देखे कितने परमाणु बंधे, समय प्रबद्ध में कितने होते हैं? अनंत होते हैं, अनंत। पर यदि हम कहेंगे एक एक परमाणु बंधे ना, एक परमाणु, दो परमाणु, तीन परमाणु, ऐसे अनंत परमाणु बंधे, मान लेते हैं हम लाख बंधे, एक एक परमाणु को हम कहेंगे ये ज्ञानावरण, ये ज्ञानावरण, ये ज्ञानावरण, तो कितने ज्ञानावरण बंधे? लाख, लाख हो गए ना, अभी हमने माने लाख, तो लाख ज्ञानावरण की अलग अलग स्थिति भी बतानी पड़ी, यानी उसको लाख होने का प्रसंग आएगा, अनंतता का प्रसंग आएगा, यानी वो अनंत बंधे ऐसा कहेंगे तो फिर हर एक की एक एक की अलग अलग स्थिति बतानी पड़ेगी। यदि कहेंगे एक एक निषेक को बताओ, हर एक की अलग अलग स्थिति है ना, एक एक निषेक की, आप एक एक परमाणु को मत बताना परंतु एक एक निषेक को लेकर उसको बताओ, तो उसमें भी असंख्यात का प्रसंग आएगा क्योंकि असंख्यात निषेक है, एक समय में एक निषेक खिरता है और लगातार हर समय खिरते रहेंगे या उदय में आते रहेंगे, तो वो कितने कोड़ाकोड़ी सागरों के हैं, तो उसको असंख्यात मानना पड़ेगा। फिर ये दोनों तरफ से उसका दोष आता है। अब आगे, इसलिए मतिशुद्ध अवधि मनपर्य और केवल ज्ञान के आवरण सामान्य के, आवरण सामान्य ने सामान्य रूप से आवरण, ये पांचों ही ज्ञान के जो आवरण वाले कर्म हैं उसको आवरण सामान्य कहा। मतिशुद्ध अवधि मनपर्य और केवल ज्ञान आवरणता मानी गई है, यानी मति ज्ञान के या मति ज्ञानावरण के बहुत सारे भेद हैं, स्थिति की अपेक्षा भी और अनुभाग की अपेक्षा भी, फिर भी उसको आवरण सामान्य से मति ज्ञानावरण कहा। इन जनरल बात की, श्रुतक ज्ञानावरण के भी भेद अलग अलग है और स्थिति भी अलग अलग है, फिर भी उसको कहेंगे श्रुतक ज्ञानावरण कर्म है। ऐसे अवधि ज्ञानावरण, मनपर्य ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। आवरण सामान्य का अर्थ समझ में आए ना, एक एक परमाणु की या एक एक निषेक की बात नहीं करते हुए जितने मति ज्ञानावरण बंधे हैं, जितने अनुभाग वाले हो या जितने स्थिति वाले हो, उसको मति ज्ञानावरण ऐसा नाम दिया, तो हम क्या कहेंगे? ज्ञानावरण का बंध हुआ ऐसा कहेंगे, तब पांचों ही ज्ञानावरण का बंध होता है, हमने देखा था पहले, तो वहां ज्ञानावरण ऐसा एक ही नाम ले लेंगे, तो उसमें ये पांचों ही गर्भित है ऐसा समझना। अर्थात यहां मतिशुता आदि ज्ञानावरणों के भेद प्रभेदों की विवक्षा नहीं की गई है, इसलिए आवरण सामान्य कहा। आवरण इन जनरल सभी की, क्योंकि सभी का बंध होता है इसलिए ज्ञानावरण का बंध होता है ऐसा डायरेक्ट कह देंगे, किंतु मतिशुता आदि पांच भेदों की सामान्य से ही विवक्षा की है, यानी ज्ञानावरण कहते तो उसमें सभी भेद गर्भित है, वो सामान्य से यहां कथन होगा। यदि ऐसा न माना जाए तो ज्ञानावरण की प्रकृतियों के पांच इस संख्या का विरोध आता है। ज्ञानावरण पांच बनती है ऐसा कहा, तो पांचों ही इसमें बंधे गर्भित है ऐसा समझना चाहिए, तथा ऐसा मानने पर भी प्रथम पक्ष में कहा गया दोष नहीं आता क्योंकि वैसा माना नहीं गया है। प्रथम पक्ष क्या कह दिया था कि सब की सभी परमाणुओं की 30 कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति होगी तो ना आबादा बनेगी, ना निषेक रचना होगी, ना क्षय होगा, परंतु ऐसा तो कोई मानता ही नहीं है। उसने प्रथम पक्ष अपने से अपनी कल्पना से प्रस्तुत किया था। अर्थात अभी इसी को समझाते, अर्थात एक समय में बंधे हुए पांचों ज्ञानावरणीय कर्मों के समस्त पुद्गल परमाणुओं की स्थिति 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण ही स्वीकार नहीं की गई है। सभी परमाणुओं की उतनी स्थिति नहीं है। सबसे जो अंतिम निषेक है उसकी स्थिति उतनी है। उसका एक निषेक पहला, उसकी स्थिति है 30 कोड़ाकोड़ी सागर कम एक समय। उसके पहले वाला 30 कोड़ाकोड़ी सागर कम दो समय है ना, और नीचे वाला यहाँ के जो निषेक है आबादा काल प्लस एक समय। हर एक निषेक की अपनी अपनी स्थिति अलग अलग है। सबकी 30 कोड़ाकोड़ी, प्रत्येक पुद्गल परमाणु की 30 कोड़ाकोड़ी सागर नहीं है। इस प्रकार द्वितीय पक्ष में कहा गया दोष नहीं आता है, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन करने पर उस उत्कृष्ट स्थिति से अपृथकभूत एक समय कम, दो समय कम आदि स्थितियों के पृथक निर्देश की आवश्यकता नहीं रहती। मैक्सिमम बता देते हैं तो जो उसमें जो कम वाले हैं वो सब उसी में गर्वित है। हम एवरेज अभी कोई भी है तो हम कहते हैं ना, अभी एज लिमिट कितनी है मैक्सिमम मनुष्यों की, अभी कितने साल जीता है, तो 80 साल का है, 90 साल, जो कुछ 100 साल, तो उसमें बाकी सब कम आयु में मरने वाले भी, उनकी भी आयु उसमें गर्भित है कि नहीं, हमने मैक्सिमम बता दिए। वैसे कहीं पर किसी भी काल में जो पहला दूसरा तीसरा काल कहते हैं कितनी आयु की मर्यादा है वो तो बता देते हैं। अभी पांचवें काल में आयु की मर्यादा कितनी है वो भी बता देते हैं। कितनी है? 120 से लेकर अभी अंत में वो 15-16 साल की हो जाएगी। हाँ, तो उसके 120 बता देते, उसके नीचे वाले सभी भेद उसमें है। 120 है तो सभी जीव 120 साल के तो नहीं रहेंगे ना। हो सकता है कोई अंतर्मूर्त में भी मर जाए, कोई 10वें साल में भी मर जावे, के पंचम काल में ही मरते जल्दी, पहले नहीं मरते थे। तो ये उत्कृष्ट बताते हैं, तो उसके अंदर ये बाकी सभी भेद गर्भित है ऐसा समझना चाहिए। निर्देश की आवश्यकता नहीं रहते, ने कथन की आवश्यकता नहीं रहती। अब द्रव्यार्थिक नय की देशना से व्याकुलित चित्त वाले बहुत अच्छा विशेषण देकर हमको समझाते क्या कहते हैं, द्रव्यार्थिक नय की देशना मिली है, 30 कोड़ाकोड़ी सागर बता दिया है और यह आबादा निषेक, उसकी सभी बात उसमें उन्होंने बता दी वो प्रश्न समाधान में। तो ये द्रव्यार्थिक नय की देशना ने उपदेश सुनकर अंदर ऐसा लगता है मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ, व्याकुलित चित्त वाले पर्यायार्थिक नय शिष्य की बुद्धि व्याकुलता को दूर करने के लिए जो डिटेल में जानना चाहता है और जब तक नहीं जानता तब तक व्याकुल होता है, तो उस व्याकुलता को दूर करने के लिए आचार्य पर्यायार्थिक नय की देशना करते हैं, यानी उसी को अभी और अच्छी तरह से समझाएंगे। अब पांचवा सूत्र, तिन्नी वास सहस्राणी आबाधा। वास याने वास किसको कहते? हाँ भाई, प्राकृत जानने वाले, वर्ष, वर्ष को वास कहते हैं। वास सहस्र है ने, सहस्र वर्ष कितने? 3, यानी 3000 वर्ष अपनी भाषा में। नीचे देखो, देखो पूर्व सूत्रोक्त ज्ञानावरणी आदि, आदि में किस किस को लेना? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, आसाता वेदनीय, अंतराय, अंतराय पांचों अंतराय, तो ये ज्ञानावरण आदि में आए। तो ज्ञानावरणादि कर्मों का आबाधा काल 3000 वर्ष है। तिन्नी वास सहस्राणि लिखा था ना, पहले भी ये शब्द आया है, वास पुदत्त पृथक वर्ष वगैरह। हाँ, हमने सुना तो है। तो 3000 वर्ष हैं। अब लिख तो दिया कि आबाधा 3 वर्ष 3000 वर्ष है, परंतु आबाधा कहना किसे? प्रश्न तो आगे का भी है ना अपने पास। तो बाधा के अभाव को अबाधा कहते हैं और अबाधा ही आबाधा कहलाती है। तब तक कोई बाधा नहीं है, कर्म खिरेंगे ही नहीं। बंधने के बाद कुछ काल तक कर्म खिरेंगे ही नहीं, ना एक भी परमाणु खिरेगा, उतने काल को आबाधा काल कहते हैं। बंधने के बाद जितने काल तक एक भी निषेक का उदय नहीं होगा, उतने काल को यहाँ आबाधा काल कहेंगे, वो कर्म का आबाधा काल कहलाएगा। अभी आगे समझ जाते हैं। जिस समय प्रबद्ध में, यानी कोई एक समय प्रबद्ध बांधा ना, प्रबद्ध ने बंधा है अभी, 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम स्थिति वाले पुद्गल परमाणु होते हैं, यानी कोई परमाणु 30 कोड़ाकोड़ी सागर के है, सभी के सभी नहीं, ये पूरा मिलकर समय प्रबद्ध यहाँ बांधा इस समय, यानी ये नीचे यहाँ पर बंध हुआ ना, बंध इस पोजीशन पर हुआ, और ये अंतिम जो निषेक है वो 30 कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति वाला है। तो जिस समय प्रबद्ध में 30 कोड़ाकोड़ी सागर वाले परमाणु है, उस समय प्रबद्ध में एक समय प्रमाण काल स्थिति वाले पुद्गल परमाणु रहना संभव नहीं है। क्या कहते हैं? कोई भी स्थिति क्यों न बांधी हो, मान लेते हैं 1,00,000 वर्ष की बांधी है, तो क्या ऐसा कोई परमाणु होगा जो एक ही समय में खेरेगा? तो कहते नहीं। यहाँ 30 कोड़ाकोड़ी सागर वाली स्थिति वाले परमाणु इस लॉट में है, इस समय प्रबद्ध में है, तो उसमें एक समय की स्थिति वाला कोई परमाणु नहीं होगा, ये बनते ही वो एक समय में खेरेगा, ऐसा कोई परमाणु उसमें नहीं है। क्योंकि वैसा मानने में विरोध आता है, ये आबाधा काल है ना, आबाधा काल 3000 वर्ष का है। जिस समय प्रबद्ध में 30 कोड़ाकोड़ी सागर के परमाणु पड़े हैं, उसमें से, उस समय प्रबद्ध में से 3000 वर्ष तक एक भी परमाणु नहीं खिरेगा। 3000 वर्ष और एक समय में एक लॉट निकलेगा, पहला निषेक। ये ऐसा ही होता है, कुदरती होता है। कर्म बंधने पर उसी समय तो निकलेगा नहीं, ये तो खाली 11वें 12वें 13वें में वो सातावेदनी बनता है और निकल जाता है, उसमें आबादा नहीं होती है, क्योंकि उसमें स्थिति नहीं होती, स्थिति बनती नहीं ना, स्थिति और अनुभव कषाय से बनते हैं, और वहाँ बस प्रदेश बंद है सातावेदनी का और प्रकृति बंद है, और आते हैं और चले जाते हैं, उसमें स्थिति ही नहीं है, तो आबादा होने का सवाल ही नहीं होता। यहाँ स्थिति पड़ी है तो उसके प्रपोर्शन में, मैक्सिमम स्थिति वाले कर्म परमाणुओं के प्रपोर्शन में आबाधा भी होगी। अब 30 कोड़ाकोड़ी सागर और यहाँ 3000 सागर, क्या प्रपोर्शन हुआ? हाँ, एक कोड़ाकोड़ी सागर के लिए 100 वर्ष, एक के लिए 100, 30 कोड़ाकोड़ी के लिए कितने हो गए? 3000 हो ना, बराबर 30, 100, यानी इसका प्रमाण क्या हुआ? 1 कोड़ाकोड़ी सागर के लिए 100 वर्ष आबाधा काल है, इतने प्रोपोर्शन में होगा उसका। तो कहते हैं कोई ऐसा परमाणु होगा ही नहीं कि जो एक समय में खिर जावे, क्योंकि वैसा मानने में विरोध है, क्योंकि जिसमें स्थिति है उसमें आबाधा काल होगा ही होगा। ख्याल आता है? हाँ। इसी प्रकार चौथी लाइन, उस उत्कृष्ट स्थिति वाले समय प्रबद्ध में, ये जो उत्कृष्ट स्थिति वाला समय प्रबद्ध है 30 कोड़ाकोड़ी वाला, उसमें 2 समय 3 समय को आदि करके 3000 वर्ष प्रमित काल स्थिति वाले भी पुद्गल परमाणु नहीं है। क्या कहते हैं? जिस समय प्रबद्ध में ये 30 कोड़ाकोड़ी का बंध हुआ है, उस स्थिति वाले कोई परमाणु है, वो जो समय प्रबद्ध है उसमें ना एक समय खिरने वाला, एक समय में खिरने वाला कोई परमाणु है, ना दो समय में खिरने वाले, ना तीन समय में खिरने वाले, ना हजार समय में खिरने वाले हैं, ना 2000 वर्षों में खिरने वाले हैं, और ना 3000वें वर्ष में भी नहीं खिरेगा, 3000 वर्ष और एक समय में खिरेगा। तो वहां तक कोई भी परमाणु ऐसा नहीं कि जो खिरेगा पहले। उद्गल परमाणु नहीं है।
इसका अर्थ क्या हो गया? हम कहते हैं ना, हमने इतना शुभ कार्य किया, शुभ भाव किया, हमको कोई फल नहीं है। ख्याल में? अभी हम दूसरी तरह से लेते हैं कि हमारे पास इतने धन संपत्ति है, वह हमारा पुण्य का जो कोई स्टॉक बैठा था वो अभी उदय में आ रहा है, और हम समझते कि हमने बहुत पुरुषार्थ किया इसलिए बहुत पैसा कमाया। देखो, ये प्रूव करता है। और अगला वाक्य आपके प्रश्न का उत्तर भी आने वाला है।
आगे ये होता है ना, पूर्व के पुण्य का फल अभी हम भोगते हैं। अमेरिका में मैंने यही बात की कि यहाँ ये सब, यहाँ तो लोग बासी रोटी खाते हैं, तो सब चकित हो गए कि इनको कैसा पता चला, क्योंकि वहाँ सब बासी खाते हैं। एक बार करके रख दे, उनके फ्रीज होते हैं बड़े बड़े, और बासा अन्न खाते रहते हैं, उनमें गर्म रोटी खाने का भी नसीब नहीं है उनको। हाँ, तो पहले वाला जो है, आज का कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? पैसे कमाने का। हाँ, नहीं। हाँ, तत्व का विचार करते हैं, उस विचार का फल तो तात्काल है, निराकुलता प्राप्त हो रही है वो फल। परंतु उस तत्व का विचार करने रूप जो शुभ भाव है, अकेला तत्व विचार नहीं करना, लेना नहीं उसमें, तत्व विचार के प्रति जो शुभ वृत्ति उठी है ना, वो शुभ भाव है। देखो, उसमें दो भेद करना, तत्व विचार वो ज्ञान की पर्याय है, और तत्व विचार करने का जो भाव है शुभ भाव, वो चारित्र गुण की विभाव पर्याय है। बराबर? स्वाध्याय का भाव आ रहा है ना, स्वाध्याय में जो ज्ञान हो रहा है वो तो ज्ञान की पर्याय में चला जाए, ज्ञान से तो बंद नहीं होगा, परंतु स्वाध्याय करने के प्रति जो शुभ भाव उठ रहा है, वो शुभ भाव का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, वो बहुत महान पुण्य का बंध हो रहा है, अतिशय पुण्य का बंध हो रहा है, और वो बंध का फल भी भोगना पड़ेगा। तैयारी है?
सुनिए, अभी हम
भोगने में क्या,
ये तत्व विचार जो ज्ञान का, ज्ञान की जो पर्याय चल रही है, उससे ये निश्चित होगा कि हमें आगे भी ज्ञानावरण कर्म कम बैठेगा हमारे पे, आवरण कम होगा, और क्षयक्षम ज्ञान का उघाड़ जिसको कहते हैं वो और बढ़ेगा। हर एक गुण की अलग अलग बात लेना।
हाँ, तत्व विचार की महिमा, यानी ये जो ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान हो रहा है तो कितनी निराकुलता हो रही है, परंतु ज्ञान के साथ साथ यहाँ शुभ भाव चल रहे अपने, ये शुद्ध भाव तो नहीं है ना। आत्मा में स्थिरता नहीं है, आत्मा संबंधी कर्म संबंधी हम ज्ञान कर रहे हैं, सही ज्ञान कर रहे हैं। यहाँ तो लिखा था ना, महापाप का क्षय हो जाता है, पुराने कितने ही पापों का तो क्षय होता है ना, अभी उनका अनुभाग भी अत्यंत हीन हो जाता है, तो ज्ञानावरण का आवरण भी घटेगा पूर्व में बंधे हुए, तो सहज रूप रीति से ये ज्ञान में आएगा कि नहीं आएगा? जब हम स्वाध्याय करते हैं और कोई समझता है मेरी बुद्धि बहुत हीन है, तो ये स्वाध्याय से ज्ञानावरण का अनुभव घटेगा और उसके ख्याल में आएगा कि नहीं आएगा? जरूर आएगा, हम देखते हैं ना इसे।
इसके लिए रोजाना पढ़ना चाहिए, 4 दिन के बाद 10 दिन के बाद एक बार आवे, हमको कुछ समझता नहीं है इसलिए गर्भगलित होकर भाग जाते हैं, और जो रोजाना आते हैं उनको बात समझ में आती है। ये ज्ञानावरण कर्म जो ढीला ढीला पूर्व का जो हो रहा है उसकी ये प्रतीति है, लेकिन हम ऐसा समझते कि बस एक दिन में हमको सब समझना चाहिए। ये देखो, ये जो हम अबाधा काल आदि जो बात देख रहे हैं उस पर से ये बात सिद्ध होती है।
और जिसको जिज्ञासा है उसके समझ में नहीं आवे ऐसी बात 3 काल में नहीं हो सकती। जिज्ञासा है तो समझाने वाला भी मिलेगा और समझ में भी आएगा। बीच में पहले के बंधे हुए का उदय चल रहा है ना।
अच्छा, ये
हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हम तो अनादि से बांधते आ रहे हैं। एक समय के लिए भी सांस नहीं लेने की फुर्सत है।
देखिए आप तो देखो ये पारसनाथ मुनि जो है उनके तीर्थंकर प्रकृति तो बंद रही थी या बांधी हुई थी, दोनों में से कोई भी लेना, फिर भी उनके उपसर्ग हुआ। तीर्थंकर प्रकृति का क्या हुआ, सत्ता में है, ख्याल में है ना, वो उसकी जब उदय आएगा तो बाकी कोई उपसर्ग उपसर्ग रहेगा ही नहीं उनके, पर अभी तो सत्ता में पड़ी है। लेकिन कुछ नहीं, सत्ता में जितने खोटे कर्म होवे या अच्छे कर्म होवे उसका तुम्हें कोई नुकसान या फायदा नहीं है, उदय में आवे उसकी बात है, उसमें तुम्हारा अनुभाग मिलेगा वगैरह वगैरह।
ऐसा कभी कभी आपका प्रश्न है कि ऐसा हम करें और उसके इमीडिएट उसका फल मिले ऐसा लगता है, परंतु अंदर सभी प्रकार के कर्म पड़े हैं ना उसमें से। और ऐसा भी होता है वर्तमान के परिणामों के कारण पूर्व जो उदय में आने योग्य कर्म है उसके अनुभाग में परिवर्तन होता है। पूर्व के कर्मों की स्थिति भी ऊपर ज्यादा नीचे होती है, उत्कर्षण अपकर्षण आदि सभी बातें होती है, उसमें बहुत सारी वेरिएशन होते हैं। कर्म बंधने के बाद हमने देखा ना उसका उपशम हो सकता है, उसका उदय हो सकता है, उसमें उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि आदि बातें उसमें होती रहती है।
देखो जो मिथ्या दृष्टि जीव है, समझ लो हमारे तुम्हारे जैसे जो कोई है, उनके तो तुरंत फल देने वाला कर्म भी नहीं बनता है, वो तो मुनियों की अपेक्षा में अंतर मुहूर्त के बाद उदय में आने वाले कर्म बनते हैं। अभी तो हमको सागरों की ही बात है, ख्याल में है ना। तो ये जो आप कह रहे हैं कि पहले वाले जो बंदे हैं वो थोड़े से डाइल्यूट होके समझो ढीले होके आते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने इतना दान दिया तो हमको उसका ये फल मिला, या हमने ऐसे उपवास किए उसका हमें फल मिला, हम शिखर जी जाके आए हमारा धंधा बहुत बढ़ गया, हम स्वाध्याय में आए तो हमारे शेर के भाव बढ़े। वो तो मिला जरूर है,
वो तो ज्ञान की अपनी योग्यता से। क्या है वो ज्ञान की अपनी योग्यता से ये ज्ञान खिल गया।
देखो ये यहाँ पहले आपको समय प्रबद्ध ज्ञानावरणी कर्म का आवरण था, वो हट गया और आप समझ गए।
जितने ज्ञान है ना उतने आवरण है। आपने क्या कहा, आपने ख्याल नोट किया, समय प्रबद्ध ज्ञानावरणीय। जैसे हम जर्मन भाषा नहीं जानते हैं तो हमारा जर्मन भाषा ज्ञानावरणीय का उदय चल रहा है, औदयिक अज्ञान कहते हैं उसको। और जब उसको समझने लगेंगे तो हम कहेंगे उसका क्षोभशम हो रहा है। सभी प्रकार के ज्ञानावरण है उसके पास, अभी उसका क्षोभ समय नहीं है। नहीं नहीं आएंगे। पहले के आते हैं वो उस पर डालना ही नहीं है, ये अपने यहाँ से मूल उपादान से उठाना करना नियोग होगा तो भी क्योंकि हम पराधीन होते हैं भाई, क्योंकि हमें ऐसा लगता है क्या करें, अभी पहले का ज्ञानावरण है अभी क्या करें, है ना। अभी पंचेंद्रिय हुए हैं तो वहाँ ज्ञानावरण का इतना उघाड़ है कि नहीं है, और उसमें तत्व की जिज्ञासा ही ये मूल कारण है कि जिसमें यहाँ अपना ज्ञान चल रहा है। जिज्ञासा तत्व जानने की है ना, ये तत्व जानने की जिज्ञासा है, और वहाँ ज्ञान की आपकी पर्याय भी वैसी हो रही है। उपादान की तरफ से देखने की कोशिश करना, और निमित्त का ज्ञान फिर होता है, वैसे ऑटोमेटिक हो जाता है, वैसा वैसा निमित्त सहज हो जाता है, उसके लिए और कुछ नहीं करना पड़ता। ज्ञानावरण का क्षोभशम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, ज्ञान करो बस।
अरविंद भाई कह रहे हैं कि भाग्यवंतना काने आवात पड़े, अभी आपके पुण्य का इतना महान उदय हो रहा है कि जिनवानी सुनने का समझने का अवसर प्राप्त हो रहा है, ख्याल में ये पहले के हमारे पुण्य का उदय है ना। चलो।
देखो क्या कहते चौथी लाइन से फिर, इसी प्रकार उस उत्कृष्ट स्थिति वाले समय प्रबद्ध में दो समय तीन समय को आदि करके 3000 वर्ष प्रमित काल स्थिति वाले भी पुद्गल परमाणु नहीं है, क्योंकि आबादा 3000 वर्ष की है ना, तो वहां तक कोई परमाणु ऐसा नहीं कि उसके पहले उदय में आवे, क्योंकि ऐसा स्वभाव ही है। अरविंद भाई ने ऐसा बताया ना, हाँ अभी आपने पूछा था ना, ऐसा सहज ही होता है, निसर्गता होता है कि क्या होता है, ऐसा स्वभाव है। हमें एक कोई मिले थे ऐसे खोज करने वाले, उन्होंने बोला कि हमें क्या रिसर्च करना चाहिए ये आबादा काल क्यों होता है। याद आया? ये करना नहीं है, रिसर्च नहीं होता है। और स्वभाव अन्य के प्रश्न योग्य नहीं हुआ करते हैं। हाँ, स्वभाव अन्य के प्रश्न योग्य नहीं हुआ करते, ऐसा न्याय है, यानी ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। पूर्व सूत्रोक्त कर्मों की यह उत्कृष्ट आबादा है। क्या कहा? उत्कृष्ट आबादा, जहाँ उत्कृष्ट स्थिति है वहाँ उत्कृष्ट आबादा होगा। छोटी स्थिति वाले कर्म किसी ने बांधे तो उसकी छोटी आबादा होगी, है ना? जैसे एकेंद्रीय जीव उत्कृष्ट स्थिति उनकी जो वो भी मिथ्यात्व की एक सागर की बांधते हैं, और ज्ञानावरण की उसका 3/7 इतना सागर बांधेंगे, तो उनकी आबादा भी कितनी छोटी होगी, उस प्रमाण में लेना उसको। स्थिति के ये जो जितनी स्थिति बांध रहे हैं उसके प्रपोर्शन में आबादा होती है। तो उत्कृष्ट स्थिति बताई, तो जो समय प्रबद्ध है उसमें यदि 30 कोड़ा कोड़ी वाला अगर कोई पुद्गल परमाणु है तो ही उसकी 3000 वर्ष की आबादा होगी। किसी ने एक कोड़ा कोड़ी सागर का कोई बांधा होगा तो उसकी 100 वर्ष हो जाएगी, ख्याल नहीं था? तो इसको उत्कृष्ट आबादा कहते हैं। एक समय प्रबद्ध अपने असंख्यातवे भाग प्रमाण 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम स्थिति वाले पुद्गल स्कंधों से सहित होता हुआ, क्या कहते हैं? एक समय प्रबद्ध कितना है? अनंत है, और 30 कोड़ा कोड़ी सागर ये उसका असंख्यात, ये नहीं, देखो समय प्रबद्ध का असंख्यात भाग नहीं किया। देखो एक समय प्रबद्ध अपने असंख्यात भाग प्रमाण 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम स्थिति वाले पुद्गल स्कंदों से सहित होता हुआ अपकर्षण के द्वारा बिना स्थिति क्षय के इतने अर्थात 3000 वर्ष प्रमित काल तक उदय को नहीं प्राप्त होता है, यह अर्थ कहा गया है। क्या कहता है? हाँ, एक समय प्रबद्ध बांधा है, उसकी स्थिति कितनी बांधी उत्कृष्ट? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। यदि अपकर्षण के द्वारा उसकी स्थिति अगर नहीं घटती है तो, यहाँ लिखा ना बीच में, अपकर्षण के द्वारा बिना स्थिति क्षय के, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बंधने के बाद उसका अपकर्षण हो जाता है। अपकर्षण होता है यानी ये जो अभी हमने यहाँ निषेक रचना दिखाई है, आबादा काल 3000 वर्ष और 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक के, कभी कभी क्या होता है ये ऊपर के अधिक स्थिति वाले परमाणु नीचे आते हैं, फिर भी इतने नीचे आए नहीं आएंगे कि एक दो चार समय में उदय में, उसमें भी जघन्य आबादा छोड़कर उसके ऊपर आ सकते हैं, तो वहां तक वो आएंगे तो वो आबादा कम हो। तो यहाँ लिखा बिना स्थिति क्षय के, यानी उतनी ही यदि उनकी स्थिति रह जाती है उसमें यदि अपकर्षण नहीं होता है तो आबादा 3000 वर्ष की ही रहेगी। तीन हजार वर्ष का है, उसमें 100 साल घटेंगे। हाँ, अभी अपकर्षण कितना हुआ उसकी मैक्सिमम क्या लिमिट रही, समझो ये ऊपर की कितने घट गई स्थिति अपकर्षण हुआ इनका, तो उतने प्रमाण में ये आबादा घट सकती। यह अर्थ कहा गया है नीचे से तीसरी लाइन अभी एंड में, एक समय कम 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम, दो समय कम 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम इत्यादि क्रम से एक समयहीन आबाधा कांडक से कम 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमित उत्कृष्ट स्थिति तक के पुद्गल स्कंदों की भी यही 3000 वर्ष प्रमाण आबाधा होती है। क्या कहेंगे, नहीं समझे? नहीं समझे, मैं समझ गई। ये 30 कोड़ाकोड़ी सागर वर्षों की जो वहां परमाणु है उस निषेक की आबादा कितनी है? 3000 वर्ष। 30 कोड़ाकोड़ी सागर कम एक समय, ये निषेक की उत्कृष्ट स्थिति कितनी, इसकी स्थिति कितनी है? 30 कोड़ाकोड़ी माइनस एक समय, उसकी आबादा कितनी होगी? नहीं, उसकी भी 3000। दो समय कम उसकी भी 3000, तीन समय कम उसकी भी 3000। तो ऐसा विशिष्ट लॉट है, उन सब की आबादा समान होगी। पूरा नहीं, एक समय कम, दो समय कम, तीन समय कम, मान लेते हैं 1000 समय कम तक के सभी निषेकों की आबादा समान ही होगी। तो ये समान आबादा वाला जितना लॉट है उसको कहेंगे आबादा कांडक। हाँ, कितने हैं वो उस वहां तक के स्थितियों की समान आबादा कितनी? 3000 वर्ष। अभी यहाँ पर आगे वाला कोई एक ऐसा लॉट लेना, उनकी आबादा कितनी है? 3000 माइनस एक समय। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 3000 वो ऊपर हो जाएंगे। हाँ, आगे हम उदाहरण से समझेंगे उसको। ये आबादा कैसे गिनना उसका उदाहरण अभी आगे देंगे। इतना ही समझना, जितने निशोकों की आबादा समान होगी उसको आबादा कांडक कहेंगे। आबादा सबकी सेम हुई है। हाँ, वही तो मैंने बताया। हाँ, यही
मेरा ये प्रश्न है, आपने अंतिम लिया, ये स्टार्टिंग का 3000 है, वो भी अगर समझो कि कुछ होता नहीं है तो वो भी 3000 के बाद ही उड़ेगा।
हाँ, एक मिनट, इसको मैं बराबर नहीं समझा पाई, यहाँ हम पढ़ेंगे ना आपको ख्याल में आ जाएगा। अगले पृष्ठ पर वो समझाया है, हम यहाँ पढ़ेंगे पहले। देखो, अब ये शंका पूछते हैं 149 पेज पर, पहली शंका जो है आबादा कांडक की उत्पत्ति कैसे होती है, ये आबादा कांडक क्यों कहते हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे समझना, उसका समाधान। उत्कृष्ट आबादा काल को विरलन करके विरलन करना यानी बिखेर देना, वो आगे उन्होंने समझा। जैसे तीन समय अगर कहेंगे तो एक 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 तीन जगह लिखना, उसको कहते हैं विरलन करना। ऊपर उत्कृष्ट स्थिति के समान खंड करके एक एक रूप के प्रति देने पर, एक एक रूप यानी एक एक संख्या के प्रति देने पर जो हमने विरलन किया है, आगे उदाहरण देंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा, आबादा कांडक का प्रमाण प्राप्त होता है। अभी उदाहरण देके समझाते हैं। मान लो उत्कृष्ट स्थिति 30 समय, ये 30 कोड़ाकोड़ी के बदले हुए 30 समय उत्कृष्ट समझाने के लिए, आबादा उसका 3 समय। तो अभी 3 को विरलन करना यानी 3 को अगर एक एक में लिखेंगे तो 3 बार एक एक लिखना पड़ेगा। तो तीन को विरलन किया और उत्कृष्ट स्थिति के समान खंड करना, उसके तीन समान खंड करना है, 30 को तीन में डिवाइड करना, तो हमको 10, 10 और 10 लिखने पड़ेंगे। अर्थात 30 को तीन से डिवाइड करने पर 10 यह आबाधा कांडक का प्रमाण हुआ, इसको आबाधा कांडक कहेंगे 10। और उक्त स्थितिबंध के भीतर तीन आबाधा के भेद हुए, इसमें आबाधा के तीन भेद हो गए हैं। अभी ये जो 30 समय है, 30 समय ना, 30 समय की स्थिति बंधी यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये तीन समय तो आबाधा है और उसके तीन भाग किए 10 10 10 के। हाँ, अब इसी को समझाते हैं। देखो विशेषार्थ में कर्म स्थिति के जितने भेदों में एक प्रमाण वाली आबाधा होती है, उतने स्थिति भेदों के समुदाय को आबाधा कांडक कहते हैं। उतने उतने स्थिति के लिए उतना उतने आबाधा। विवक्षित कर्म स्थिति में आबाधा कांडक का प्रमाण जानने का उपाय यह है कि विवक्षित कर्म की उत्कृष्ट स्थिति में उसी की उत्कृष्ट आबाधा का भाग देने पर जो भजनफल आता है, भजनफल यानी भागाकार करने पर जो संख्या आती है, तत्प्रमाण ही उस कर्म स्थिति में आबाधा कांडक होता है। अभी यहाँ ऊपर बताया ना, 30 समय उत्कृष्ट स्थिति है, उसको तीन से डिवाइड किया तो वो आबाधा कांडक हुआ। वैसे 30 कोड़ा कोड़ी सागर को 3000 से डिवाइड करना पड़ेगा वर्ष, वो आबाधा कांडक का प्रमाण होगा। यही बात प्रकृत में विरलन देय के क्रम से समझाई गई है। विरलन यानी ये जो एक 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 लिखा है उसको कहते हैं विरलन, और एक एक के माथे पर जो संख्या लिखे है उसको कहते हैं देय। अपनी विरलन, तीन का विरलन किया और 30 संख्या इक्वल तीन खंडों में डिवाइड करके उसको देय रूप से दिया 10 10 10। इस प्रकार जितने स्थिति के भेदों का एक आबाधा कांडक होता है, उतने स्थिति भेदों की आबाधा समान होती है, उतने के लिए समान आबाधा है। यह कथन नाना समय प्रबद्धों की अपेक्षा से है। हाँ, एक समय प्रबद्ध में यह नहीं लगाना, यही मैंने जो भूल की थी ना, ये कांडक यहाँ पर नहीं समझाना है। नाना समय प्रबद्धों की अपेक्षा ने, अभी जो 30 कोड़ा कोड़ी वाला है उसमें 3000 वर्ष की हमने देखे, कोई 20 कोड़ा कोड़ी हो तो उसका वो दो, यानी उसके लिए वो आबाधा कांडक का प्रमाण होगा वैसा वैसा। आगे सागर लगाना है भाई, सागर में असंख्यात वर्ष हो गए तो उसके डायरेक्ट 3000 से कैसा भाग देंगे। अच्छा, आगे सागर लिखना फिर, आप कोड़ा कोड़ी को खाली 3000 से भाग दो, आगे सागर रखना पड़ेगा। हाँ, वो रहेगा। हाँ, नहीं नहीं देखिए, हम ये पूरा पढ़ेंगे फिर आपको हम प्रश्नोत्तर भी करेंगे। हाँ, आगे उन्होंने संख्या लेकर समझाया है। ऐसा नहीं है,
यहाँ एक प्रश्न होता है, यहाँ जो आपने अंतिम बताई और ये बताई
नहीं, उसमें वो नहीं लगाया,
बोले नहीं लगता है, लेकिन ये सभी का 3000 साल ही आता है,
उन सभी का 3000 ये इसलिए क्या लिखा उन्हें, नाना समय प्रबद्ध, किसी ने उत्कृष्ट स्थिति बांधी है कितनी, 30 कोड़ा कोड़ी, और किसी ने बांधी है 30 कोड़ा कोड़ी माइनस एक समय, किसी ने बांधी है 30 कोड़ा कोड़ी माइनस दो समय, किसी ने बांधी है 30 कोड़ा कोड़ी माइनस हजार वर्ष, सबके लिए आबादा 3000 वर्ष की ही होगी। ये अभी क्लियर होगा जरा, अलग अलग जीव की अपेक्षा ही है, या एक जीव की अपेक्षा अलग अलग समयों की बात, अलग अलग समय प्रबद्धों की बात है ये। हाँ, एक समय के लिए जो है उसको आबादा कहेंगे। हाँ, पढ़ने पर ख्याल होगा, और कोई अभी कितनी स्थिति बांधता है तो उसकी आबादा कितनी होगी, तो इतने विशिष्ट ग्रुप के लिए जो इतनी स्थिति बांधता है, इतनी बांधता है, इतनी बांधता है, इतनी बांधता है, यहाँ तक के सभी जो विकल्प है उन सबके लिए आबादा समान होगी। अभी यहाँ से जो नीचे की जो स्थिति के भेद है वहाँ पर आबादा कितनी है, तो 3000 माइनस एक समय, 3000 वर्ष माइनस एक समय, ये यहाँ पर नहीं लेना, दूसरा समय प्रबद्ध लेना। देखो 30 समय वाली स्थिति वाले सबके लिए आबादा 3 समय, 29 समय वाला कोई बांधता है तो भी 10 समय, 28 समय वाला बांधता है तो भी, सॉरी 10 नहीं 3 समय, 27 समय वाले के लिए भी 3 समय, 26 समय वाले के लिए भी 3 समय, वो कांड कितने का था, 10 समयों का, तो 30 से लेकर 21 तक के लिए वो पूरा जो है कांडक, तो उनके लिए आबादा समान होगी। यानी कोई 30 की स्थिति बांधता है, कोई 29 की बांधता है, कोई 28 समयों की बांधता है, सबके लिए 3 समयों की आबादा, उसको आबादा कांडक कहना। एक समय प्रबद्ध में नहीं वो लगाना, ये महीना घोटाला हुआ था ना वहाँ समझाते समय, परंतु वो हम एक समय प्रबद्ध की लिमिट बता रही थी मैं, तो ये अलग अलग समयों में बंधे है, क्योंकि कभी स्थिति ज़्यादा बनती है, कभी कम बनती है, तो आबादा का गणित कैसा निकाले हम, तो इतनी रेंज के लिए 3000 वर्ष, अब उसके नीचे की जो रेंज है उतने ही समयों की, उसके लिए 3000 वर्ष माइनस एक समय, फिर उसके नीचे का जो लॉट है उसके लिए 3000 वर्ष माइनस दो समय, इस तरह से। जल्दी यानी कितने है? वो आबादा के पहले तो नहीं, हाँ, जितनी स्थिति बांधी है, ऐसा नहीं समझना कि हमने हजार वर्ष पहले बांधी थी वही परमाणु अभी आएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हजार वर्ष में हर समय हम जो स्थिति बांधते वो वेरिएबल है, कभी कभी बहुत उत्कृष्ट स्थिति बांधी तो उसका आबादा काल भी बड़ा था, और कभी थोड़ी कम बांधी तो उसका आबादा काल भी कम था, तो बाद में बंधे हुए भी कभी पहले उदय में आ सकते हैं ना, आबादा काल जिसका कम होगा वो उसका उदय पहले शुरू हो जाएगा। हाँ, सबकी मिलकर स्थिति हो जाती, फिर सत्ता वाली स्थिति अलग, हर समय में जो हम स्थिति बांधते हैं उसकी ये निषेक रचना बताई। तीन हजार साल, हाँ, सबके लिए 3000, उसको आबादा नहीं कहते हैं, हाँ, क्योंकि क्या है वो उदय में आ सकता है अपकर्षण होकर इसकी, हाँ, उसको स्थिति कहते हैं, उसको आबादा नहीं कहते, हाँ, आबादा कहना कि एक भी परमाणु उदय में न आवे उसको आबादा कहना, उस विशिष्ट कर समय प्रबद्ध में से कोई भी पुद्गल परमाणु उदय में नहीं आने को आबादा कहते। हाँ, नहीं आ सकते, वो उसकी आबादा है, 30 कोड़ा कोड़ी वाला हो या यहाँ का होगा, वो उसके पहले उदय में ही नहीं आ सकता, ये अपकर्षण वगैरह जब होता है तो सभी जगह के परमाणु सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो कोई ऊपर के भी नीचे आ सकते हैं, वहाँ रहेगा। हाँ, कभी कभी ऊपर के भी नीचे अपकर्षण होकर उदयावली के वहाँ पर भी आ सकते ये तो हाँ हाँ ये निशे वो उसका रूल अलग है, अपकर्षण ये अपकर्षण उत्कर्षण के वो सारे नियम अलग है। उसके पहले उदय में नहीं आएगा, हाँ, परंतु कभी कभी क्या है उदीर्ण होकर थोड़ा पहले आ सकता है, मगर ये अभी तो आबाधा इतनी समझना, उदय की आबाधा, उदीर्ण की भी आबाधा होती है अलग। अभी ये तो समझा, अभी ये समझना ना, उदय की बात समझेंगे, इसमें कोई ऑप्शंस होते हैं या कुछ उदीर्ण होती है, उदीर्ण भी ऐसी नहीं होगी कि पहले ही समय में जाके कोई आ जाएगा, उदीर्ण भी कुछ समय पहले आ सकता है, वो उदीर्ण की आबादा कहलाएगी, ये उदय की आबादा कहेगी। हाँ ये अभी कुछ नहीं कॉम्प्लेक्स करना, ये इतना ही सिंपल है सब। यानी अनेक अलग अलग स्थितियों की आबादा समान होती है, रेंज विशिष्ट रेंज वाली जो स्थिति है, समझ में, अभी 30 कोड़ा कोड़ी से लेकर और कुछ हम घटाएंगे उसमें, उन सब की आबादा सेम, उसको कहते हैं अलग अलग नाना समय प्रबद्ध, नाना यानी अलग अलग, अलग अलग समय प्रबद्धों में उत्कृष्ट स्थिति अलग अलग है, फिर भी 30 कोड़ा कोड़ी से लेकर उतरकर हम कुछ विशिष्ट लिमिट तक आते हैं, वहां तक का आबादा कांडक कहलाएगा। आपने जो 3000 से डिवाइड किया था ना उसको, उतने सागर वर्षों तक के जो वेरिएशन है उसमें सबके लिए 3000 वर्ष की आबादा होगी, उसको आबादा कांडक कहते हैं। तीस कोड़ा कोड़ी के बदले एकदम 20 कोड़ा कोड़ी अगर किसी ने बांधी है तो उसके तो हाँ, यानी आबादा के भी कितने वेरिएशन है, उत्कृष्ट आबादा, फिर एक समय कम आबादा, दो समय कम आबादा, तीन समय, ऐसा ऐसा नीचे तक लेना, जघन्य स्थिति की आबादा भी जघन्य है, तो उत्कृष्ट आबादा से लेकर जघन्य आबादा तक एक एक समय कम होने वाली आबादा देंगे, और स्थिति के भेद एक एक आबादा के लिए रेंज स्थिति की अलग अलग है, स्थिति की रेंज वेरिएबल है ना बहुत, एक आबादा कोई भी विशिष्ट एक स्पेसिफिक आबादा है उसके लिए स्थिति के भेद बहुत है। अभी हमने ये 30 और 3 समय की बात देखी थी, 3 समय वाली जो आबादा है उसके लिए स्थिति के भेद कौन से है, 30 29 28 27 सब 10 समयों के, और फिर 2 समय की वो 20 से लेकर 20 19 18 वगैरह वगैरह 11 तक, फिर एक समय की आबादा तो उसके लिए 10 से लेकर वो नीचे। ये शंका पूछी ना आबादा कांड की उत्पत्ति कैसे होती है, 149 पेज पर उत्कृष्ट आबा, ये पढ़ा था हमने नीचे, विशेषार्थ भी पढ़ा था ना, हाँ, ये कथन नाना समय प्रबोधन की अपेक्षा है, ये बात मूल है। अब अंतिम पैराग्राफ, उन कर्म स्थिति के भेदों में एक समय दो समय आदि के क्रम से जब तक एक समय हीन आबादा कांडक मात्र तक स्थितियां उत्कृष्ट स्थिति से कम होती है, तब तक उन सब स्थिति विकल्पों की वही अर्थात 3000 वर्ष प्रमित उत्कृष्ट आबादा होती है। आबादा कांडक हमने निकाला, जैसे वो 30 और 3 के इसमें 10 का एक कांडक हुआ, तो 10 का कांडक है तो आबादा कांडक में से एक हीन किया तो 9 हो गए, तो 30 समय में एक कम दो सम कम तीन कम ऐसे 9 कम तक नीचे आना, 30 में से 9 कम तक, तो 30 को गिनेंगे और वो सब गिनेंगे तो सब मिलकर 10 हो जाएंगे ना, जैसे 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 वहाँ तक 10 हो गए। यानी आबादा कांडक में से एक कम कर दो, उतने उत्कृष्ट में से कम करो। उसका अर्थ क्या है, उत्कृष्ट सहित जितने आबादा कांडक का जो समय है उतने ही उसमें गिनना है। तो 10 हो गए ना, यहाँ 10 का आबादा कांडक है, तो 30 भी उसमें आए, 29 भी आए, 28 भी आए, ऐसे 21 तक गिनना। तो 30 से लेकर 21 तक की आबादा सेम होगी, वही होगी, उसको आबादा, उत्कृष्ट आबादा है उसकी। हाँ हाँ, देखो 30 समय के लिए भी 3 समय है, 29 समय स्थिति वाले के लिए भी 3 समय है, 28 समय वाले कोई स्थिति बांधता है उसके लिए भी 3 समय की आबादा है, 27 ऐसे 21 तक कितनी भी स्थिति बांधे उसकी आबादा 3 समय। वो 30 से लेकर 21 तक का जो ग्रुप है वो दूसरा कांडक। हाँ, क्योंकि 3 में से एक कम करना। हाँ, वो एक समय प्रबद्ध की बात नहीं है, अलग अलग समय प्रबद्धों की बात है। देखो किसी ने 30 समय वाली बांधी स्थिति, जो 30 समय की बांधी स्थिति किसी ने, दूसरा कोई जीव है या वही समय, वही जीव है अन्य समय में, 29 की बांधता है, कभी ऐसे 21 तक की बांधी, 30 से लेकर 21 तक की सबकी आबादा 3 समय। एक समय में बंधे हुए में ये नहीं बता रहे, एक समय प्रबद्ध में नहीं घटित करा रहे, अलग अलग समय प्रबद्ध है, अलग अलग समयों में बंधे हुए या अलग अलग जीवों ने बांधे हुए। जैसे ज्ञानावरण ने, किसी ने तो 30 कोड़ाकोड़ी सागर का ज्ञानावरण बांधा, किसी ने 30 कोड़ाकोड़ी सागर -1 एक समय, -2 समय, -3 समय, ऐसे घटते चले जाओ, तो वो सबके लिए आबादा 3000 वर्ष की है। जब उस रेंज के नीचे आ जाएंगे, यहाँ जो उन्होंने उदाहरण दिया 20 समय की स्थिति बांधेगा, तो वहां आबादा में भी एक समय घटेगा। यहाँ 30 में से एक 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 घटते घटते 21 तक तो आबादा कुछ नहीं घटी, उतनी ही रही। 21 वाले की आबादा तो 3 समय और 20 वाले की आबादा यहाँ 2 समय। तो 30 से 21 तक की जो रेंज है पूरी, उसके लिए आबादा सेम। तो जो ये रेंज का प्रमाण है उसी को आबादा कांडक कहते हैं। बराबर। हाँ हाँ, ये जब अभी समझाएंगे ना आगे उदाहरण देख के, तभी और क्लैरिटी हो जाएगी। बाधा ही बाधा है क्या? देखो हमेशा क्या होता है, मैं अभी इतने साल से हम पढ़ रहे हैं ना यहाँ करणान योग की पुस्तकें, तो आज जो डिफिकल्ट लगता है ना वो कल एकदम आसान लगेगा। तो कल का डिफिकल्ट है वो अलग बात है, आज का डिफिकल्ट कल आसान हो जाएगा, और फिर कल नई बात और सीखेंगे हम। अभी रुकते हैं ये, यहाँ नीचे के पैराग्राफ से फिर दोबारा ले लेंगे। यहाँ जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नवो